आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। गुरुवार को यहां लगभग 26,000 नए मामले सामने आए। वहीं पूरे देश में 39,000 से अधिक लोग संक्रमण की चपेट में आ गए। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्यों में भी गुरुवार को 1,000 से ज्यादा लोग इस संक्रमण के चपेट में आए। दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर फिलहाल नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस बारे में कहते हैं,
दिल्ली के अंदर सिचुएशन कंपेयर टू अदर सिटीज और अदर स्टेट्स काफी अभी कंट्रोल में है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी 19.32 है, पंजाब में 5.96 है, मध्य प्रदेश में 4.89% है, केरल में 3.49%, हरियाणा में 2.88% और गुजरात में 1.92% है। दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी कल थी वो 0.66 थी, मतलब उनके कंपैरिजन में तो देखो महाराष्ट्र में 19% और दिल्ली में 0.66 है, तो फर्क काफी ज्यादा। कई बार लोगों को लगता है कि दिल्ली भी बराबर हो गया, ऐसा नहीं है, काफी कुछ कंट्रोल में है, पर मैं फिर भी कहूंगा कि सतर्क रहना सबसे जरूरी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने की कोशिश की जा रही है।
ये जो 30,000 से 40,000 पर डे वैक्सीन लग रहे हैं, अब इसको बढ़ा के हम 1,25,000 पर डे वैक्सीन लगाया करेंगे। अगले कुछ दिनों के अंदर हम इसके लिए अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ सेंटर्स जो अभी लग रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो लगभग मोटे मोटे तौर पे प्राइवेट और सरकारी मिला के 500 सेंटर के ऊपर लग रहे हैं। इसको डबल किया जाएगा, 500 से 1,000 सेंटर्स के ऊपर हम इसको लेके जाएंगे। जो अभी सेंटर्स पे लग रहे हैं, स्पेशली सरकारी सेंटर्स पे, वो 9 बजे से 5 बजे तक लगते हैं। अब इसको 9 बजे से रात को 9 बजे तक टाइम बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा लोगों को लगाया जा सके। केंद्र सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अभी उन्होंने जो गाइडलाइंस जारी की हैं सेंटर्स की, वो बहुत ज्यादा सख्त हैं, जिसकी वजह से नए सेंटर्स खोलने में दिक्कत हो रही है। अब तो अपना 2 महीने का एक्सपीरियंस हो गया वैक्सीन लगाने का, इसके बेसिस पे हम केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि अपने इन इन पैरामीटर्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए ताकि और ज्यादा सेंटर्स में वैक्सीन लगाई जा सके। सारी हिदायतें बरतेंगे, सब कुछ बरतेंगे।
और अब बात 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हो रहे विधानसभा चुनाव की। तमिलनाडु और केरल में चुनावी मौसम में कोरोना संक्रमण के मामले और बढ़ सकते हैं, इसको लेकर प्रशासन सतर्क है। वहीं पश्चिम बंगाल और असम में हालात काबू में लगते हैं। हालांकि इन राज्यों में बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां हो रही हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों राज्यों का दौरा किया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया।
बंगाल के लोग बहुत पहले से मन बना चुके हैं। बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। लोगों का ये इरादा देख दीदी अपनी खींच मुझ पर निकाल रही है। वो क्या क्या नहीं कह रहे, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी भड़की हुई है, लेकिन हमारे लिए तो देश की करोड़ों बेटियों की तरह दीदी भी भारत की एक बेटी है, जिनका सम्मान हमारे संस्कारों में रचा बसा है। और इसलिए जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई।
असम में भाजपा अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश कर रही है। गुरुवार को राज्य के करीमगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर बरसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
आज असम में एक ही मुद्दा है, विकास, तेज विकास, निरंतर विकास, दशकों पहले ये पूरा क्षेत्र बेहतर कनेक्टिविटी वाले हिस्सों में से एक था। चाय से लेकर पेट्रोलियम तक, चट्टग्राम और कोलकाता पोर्ट तक, ब्रह्मपुत्र, पद्मा, मेघना नदियों के रास्ते ही पहुंचते थे लोग। लेकिन बरसों तक चली कांग्रेस की करप्शन और वोट बैंक की राजनीति ने असम को सबसे अधिक डिस्कनेक्टेड राज्यों में शामिल कर दिया। कांग्रेस सरकारों और उनकी नीतियों ने असम को सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक हर तरह से नुकसान पहुंचाया।
राज्य में कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाकर भाजपा को चुनौती दे रही है। यहां भाजपा को घेरने के लिए एनआरसी और नागरिकता कानून का मुद्दा कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। और चलते चलते चर्चा एंटीलिया मामले की। उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास का नाम एंटीलिया है। इससे कुछ दूरी पर खड़ी एक गाड़ी में विस्फोटक मिलने और मुकेश अंबानी को धमकी दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस के अधिकारी ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जांच सुचारू रूप से चल सके इसके लिए परमवीर सिंह को हटाकर हेमंत नागराले को मुंबई पुलिस का मुखिया बनाया गया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस बारे में कहते हैं,
ये जांच में जो भी बातें आगे आएंगी वो हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नंबर एक। नंबर दो, उनकी जांच में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए करके वहां के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के हमारे जो कुछ उसमें हमारे जूनियर अधिकारी और बाकी जो भी कुछ अधिकारी उसमें उनकी बाधा नहीं आना चाहिए और अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। उसके लिए माननीय परमवीर सिंह साहब को वहां से हटाया गया।
इस मामले की जांच कर रही एनआईए ने पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को गिरफ्तार किया है। कई और पुलिस कर्मियों पर गाज गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर शिवसेना और राज्य सरकार पर हमलावर है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।